पाद की निताईतोर प्रेमनंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवे प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा आपका उत्साह कम लग रहा है थक गए तो नहीं ऑफिस में सुबह से हाँ मैं भूल गया एकादशी है तो पिछले दो तीन हफ्ते से आप सुनते आ रहे होंगे कि हम उपदेश अमृत पर चर्चा करेंगे लेकिन किसी कारणवश हम चर्चा नहीं कर पाए तो आज हमने सोचा था कि ये जो उपदेश अमृत है सबके पास है ये बुक किसके किसके पास है हाथ ऊपर कीजिए 1 2 3 4 5 तो आप प्रयास कीजिए कॉपी आप परचेस कीजिए और हर एक के पास ये बुक होना चाहिए क्योंकि आगे जो भी वेंसडेज आएंगे तो इस बुक का हम मंथन करने का प्रयास करेंगे जिसका नाम बहुत महत्वपूर्ण है क्या ये नाम उपदेश अमृत नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद ने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में और उसका ये हिंदी वर्जन है तो आज इंट्रोडक्टरी क्लास हम करेंगे इस बुक के बारे में फिर आगे आने वाली जो तीसरी क्लास होगी वो फिर हम इसका जो पहला श्लोक है वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान्यो विशेहेत धीरा सर्वमपि मां पृथ्वीं से शिष्यात् तो उस पर फिर हर एक श्लोक का जो शब्द है उसकी जो शिक्षा है गहन उस पर डिस्कस करेंगे क्योंकि जो संस्कृत शब्द है जो शास्त्रों में यूज किए गए हैं वो अपने आप में एक भंडार है जिसको खोलोगे तो उसका अंत नहीं है कहाँ तक आप पहुँच पाओगे और सारे मूल कौन है उन सबके कृष्ण है इस प्रकार से ये जो ग्रंथ है इसका टाइटल उपदेश अमृत है तो इस ये बहुत महत्वपूर्ण है जिसके बारे में अलग अलग ग्रंथों से हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे तो आप जानते हैं ये जो उपदेश अमृत ग्रंथ है ये किसने लिखा है श्रील रूप गोस्वामी इसके जो ऑथर हैं दो भाई हैं यहाँ रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी तो श्रील रूप गोस्वामी ने इस ग्रंथ की रचना की है लगभग 500 साल पहले या 450 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार तो इस ग्रंथ का जो प्रभुपाद ने प्रीफेस या फिर आमुख लिखा है जिसको इंट्रोडक्शन कहते बुक का उसकी पहली लाइन है कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्रील रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है मतलब अंडर द सुपरविजन ऑफ श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने लिखा पहली लाइन लिखी इस ग्रंथ की ये जो हरे कृष्ण मूवमेंट है इस्कॉन आंदोलन है ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है ये किसकी अध्यक्षता में चल रहा है रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में तो रूप गोस्वामी कौन है रूप गोस्वामी षड गोस्वामियों में से एक गोस्वामी है, सरल है। तो ये रूप गोस्वामी इस संप्रदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण आचार्य है। सारे सिक्स गोस्वामियों के ये प्रमुख लीडर थे। तो जैसे हमने पिछले कई क्लासेस में डिस्कस किया था कि हम किसी संप्रदाय में होने चाहिए, किसी भी आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए व्यक्ति को चार संप्रदायों में से किसी भी एक संप्रदाय में जुड़ना महत्वपूर्ण है। और हम सब लोग ब्रह्म मध्व संप्रदाय में आते हैं, जो ब्रह्मा से शुरू होता है। और फिर इसी में जब साक्षात कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, बंगाल का दूसरा नाम क्या है, गौड़ देश। बंगाल का दूसरा नाम है गौड़ देश। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है, बंगाल में गौड़ देश में अवतरित होते हैं, और उसके कारण इस संप्रदाय का नाम और आगे जुड़ गया, ब्रह्म मध्व गौड़िया वैष्णव संप्रदाय। तो ऐसे नहीं कि संप्रदाय तो बहुत हो सकते हैं, कोई वैष्णव संप्रदाय में जुड़ना बहुत आवश्यक है। कौन से संप्रदाय में? वैष्णव। और वैष्णव कौन है? जो जिसके पास ये दो योग्यता है उसको वैष्णव कहते हैं। पहली योग्यता क्या है कि जिस व्यक्ति ने विष्णु या कृष्ण के नामों को दीक्षा के रूप में गुरु से प्राप्त किया है और गुरु के आदेशानुसार राधा कृष्ण या भगवान कृष्ण के जो अलग अवतार है उनकी सेवा में लगा हुआ है, ये दो कार्य जो कर रहा है वो वैष्णव है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति है वो वैष्णव कैटेगरी में नहीं आता, वो क्या है? अवैष्णव है। वो वैष्णव नहीं है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी संप्रदाय है, संप्रदाय का मतलब है जैसे स्कूल्स है, ऑथराइज स्कूल्स, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल, उसको भी संप्रदाय कहते हैं। तो वैसे ही भगवान को जानने के लिए चार स्कूल्स हैं, रिकॉग्नाइज्ड। किसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है? कृष्ण के द्वारा, आचार्यों के द्वारा। जैसे स्कूल रिकॉग्नाइज होते हैं उसी में हम एडमिशन लेते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं और फिर नॉलेज को प्राप्त करते हैं। तो उसी प्रकार से हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में है। तो ये जो संप्रदाय है चैतन्य ब्रह्मा से शुरू होता है, फिर मध्वाचार्य, और गीता में आप देखेंगे सारे गुरु वर्गों का वर्णन किया है, और फिर फाइनली चैतन्य महाप्रभु के तक आता है। अभी चैतन्य महाप्रभु के बाद उनके प्रमुख जो भक्तगण है उनको आदेश देते हैं इस आंदोलन को और बढ़ाने के लिए। और फिर उनके महाप्रभु के बाद छह गोस्वामी, जो उनके प्रमुख छह शिष्य हैं, छह भक्त हैं, वो इस आंदोलन को फैलाते हैं। हाँ, जो छह गोस्वामी, क्या क्या नाम है छह गोस्वामियों के? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी। ये छह गोसाई जब ब्रजे कैलावास राधा कृष्ण नित्य लीला करेल प्रकाश। तो ये जो छह गोस्वामियों ने वृंदावन में निवास किया अपने सब चीजों को छोड़कर, कोई प्राइम मिनिस्टर था, कोई धनवान बाप का बहुत बड़ा एकलौता बेटा था, तो कोई वित्त मंत्री था, तो कोई अलग अलग बड़े बड़े पद में थे सारे लोग अपनी युवा अवस्था में, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के आदेश से उन्होंने अपना सारा ऐश्वर्य, सारी योग्यता सबको उन्होंने छोड़ा और क्या किया, उन्होंने वृंदावन में आए। और वृंदावन में क्यों आए? चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से। और जो भी उनके जीवन में उनको प्राप्त हुआ था, भौतिक सुविधाएं, संपन्नता, संपदा, धन आदि, उन्होंने वैसे ही छोड़ा जैसे त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति घास को कोई वैल्यू नहीं देते हम, है ना, घास के ऊपर चल के जाते हैं, कोई घास के बारे में सोचता है नहीं। तो उसी प्रकार से उनके पास जीवन में जो भी चीजें प्राप्त हुई थी भौतिक, उनको घास के तिनके के बातें त्यागा। अभी हम लोग त्यागने में बहुत दुख का अनुभव करते हैं, लेकिन वास्तव में शास्त्र कहते त्यागा शांति है। त्याग में क्या है? आप प्रैक्टिकल अनुभव आप सुबह उठते ही करोगे, है कि जो आप सुबह सुबह अपने नेचर कॉल अटेंड करने के लिए जाते हो तो त्याग करते हो तो आपको क्या महसूस होता है? शांति, सुख का अनुभूति होती है। तो उसी प्रकार से इन छह गोस्वामियों ने सब चीजों को छोड़ा चैतन्य महाप्रभु के आदेशों पर और वृंदावन आए। तो ऐसे ये जो रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, मैं इसलिए ये चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि इस ग्रंथ को शुरू करने से पहले इसके टाइटल को जानना बहुत आवश्यक है। इसका नाम क्यों उपदेश अमृत है, क्या इंपॉर्टेंस है इस ग्रंथ की, इस टाइटल यूनिक है जो रूप गोस्वामी ने दिया है। और ये रूप गोस्वामी कौन है, ऑथर भी बहुत मायने रखता है ऑथर को जानना, क्योंकि बुक क्या होता है, ऑथर का हृदय ही बुक के रूप में बाहर आता है। ऑथर जो ऑथर है, लेखक है, उसकी जो मनोवृत्ति है, उसकी जो भावनाएं है, उसका जो मन आदि है, वो सारी किस रूप में आती है, लेखनी के रूप में उतरती है कागज पर, और जो भी व्यक्ति उसको पढ़ता है तो उसके ऊपर भी उसका प्रभाव हो जाता है, उसके चेतना पर ये प्रभाव पड़ता है, उसकी भावनाओं पर, उसके मन पर, विचारों पर उसका प्रभाव होता है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि ऑथर, और ऐसे ही ऑथर्स की बुक पढ़नी चाहिए जो भगवान के डिवोटीज हैं, अनन्य भक्त हैं। तो इसलिए ये जो चैतन्य महाप्रभु को जो रूप गोस्वामी मिले थे, तो रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने लगभग 3 महत्वपूर्ण आदेश दिए थे वृंदावन जाने से पहले। वो आदेश क्या थे, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, तबे प्रभु ब्रजे पाठायला रूप सनातन, प्रभु आज्ञा दुई भाई आयला वृंदावन। तो चैतन्य महाप्रभु को रूप गोस्वामी मिले थे इलाहाबाद में। रूप गोस्वामी पहले बंगाल के वित्त मंत्री थे, और उनके जो बड़े भाई है सनातन गोस्वामी, वो बंगाल के प्राइम मिनिस्टर थे। ये दोनों भाई नवाब हुसैन के अंडर कार्य करते थे। क्यों काम करते थे, ये सारस्वत ब्राह्मण फैमिली में उनका जन्म हुआ था, बहुत विद्वान थे ये दोनों गोस्वामियों को लगभग 11 भाषाएं आती थी, अरबी, पारसी, इंग्लिश, जो मर्जी भाषाएं हैं, वो उनमें बहुत बड़े विद्वान थे। तो ऐसे नवाब हुसैन बंगाल का जो राजा था मुस्लिम, उसने देखा कि मेरे पूरे बंगाल में ये दो लोग सबसे बुद्धिमान है, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, सनातन और रूप। तो उन्होंने क्या किया, उनको कहा कि आप मेरे यहाँ नौकरी स्वीकार करो। ये एक ब्राह्मण किसी मुस्लिम की यहाँ नौकरी स्वीकार करता है तो वो अनुचित है, उचित नहीं है। लेकिन वो नहीं चाहते थे नवाब हुसैन के यहाँ नौकरी करें, क्योंकि वो नवाब हुसैन पापमय कार्यों में लगा हुआ था। तो लेकिन इन्होंने उनकी नौकरी स्वीकार की, क्योंकि नवाब हुसैन ने कहा, तुम दोनों मेरी नौकरी स्वीकार नहीं करोगे तो क्या करूंगा, जितने भी वैष्णव हैं उनको मैं कष्ट देना शुरू करूंगा और मंदिरों का विनाश आदि करूंगा। तो इन्होंने सोचा कि भक्तों को, वैष्णवों को कष्ट नहीं मिलना चाहिए, मुझे पर्सनली कष्ट मिला तो ठीक है, ये डिवोटी की भावना होती है। इसलिए भक्तों को क्या कहा जाता है, पर दुखी दुखी, और जो भक्त नहीं है उसकी भावना क्या है, पर दुखी सुखी, दूसरे को कष्ट मिल रहा है, दूसरा गड्ढे में जा रहा है तो हमारे हृदय में लड्डू फूटने लगते हैं, खुश हो जाते हैं, हमारे पड़ोसी के साथ कुछ हो जाता है, हमारे ऑफिस में कलीग के साथ कुछ हो जाता है, तो हमें लगता है कि नहीं नहीं ये ना ऐसे ही था, इसके साथ ऐसे होना चाहिए था। तो इस प्रकार से ये ईर्ष्या का भावना हमारे हृदय में है, द्वेष की भावना हमारे हृदय में है। ईर्ष्या और द्वेष ये किसकी भावना है, एक सांप की भावना है, और हृदय जो सांप है वो हमेशा ईर्ष्या को प्रतिनिधित्व करता है। सांप को कोई कुछ करता नहीं, लेकिन वो उसके आसपास रहोगे तो सांप क्या करेगा, मारेगा, डंग करेगा या काटेगा। तो उसी प्रकार से ये जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, अपने को कष्ट झेलने के लिए तैयार थे, लेकिन वो चाहते थे कि वैष्णवों को कष्ट ना मिले, भक्तों को कष्ट ना मिले, इसलिए उन्होंने नवाब हुसैन का यहाँ नौकरी स्वीकार की। और वो ग्रस्त जीवन में थे, दोनों कैसे थे, ग्रस्त लाइफ में थे, रूप और सनातन, अमर देव और संतोष देव उनका ओरिजिनली ये नाम था। तो जब लेकिन उनका हृदय वो मुस्लिम शासक के वहां नौकरी करने में नहीं लग रहा था, उनका हृदय हमेशा कृष्ण की ओर बढ़ रहा था। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को एक बार लेटर लिखा कि हम सब ग्रस्त जीवन में हैं, फिर ये भी नहीं है, बल्कि हम एक मुस्लिम शासक के अंडर नौकरी कर रहे हैं, तो हमें किस प्रकार से अपना जीवन यापन करना चाहिए, किस प्रकार से लाइफस्टाइल बनानी चाहिए कि जिसके द्वारा हम कृष्ण को एक क्षण भी ना भूले। तो चैतन्य महाप्रभु को जब ये लेटर मिला रूप और सनातन के द्वारा, तो चैतन्य महाप्रभु ने वो पढ़ा और उन्होंने उत्तर लिखा। उन्होंने कहा आपको तो उस प्रकार से आचरण करना चाहिए जिस प्रकार से एक स्त्री का घर में पति है लेकिन वो किसी पर पुरुष से प्रेम करती है, उसका कोई लवर है, हाँ, तो वो घर में बहुत अटेंटिव होती है अपने पति के सामने, हर कार्य बिल्कुल कॉन्शियस होकर करती है, सावधानी के साथ करती है, लेकिन सारे कार्य घर में करते हुए हर क्षण वो अपने लवर या जो प्रेमी है उसके बारे में ही सोचती रहती है, सोचती कि कैसे उसे मिलूं। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप चाहे अपने नौकरी कर रहे हो या आप अपने घर में हो, सारा ये भौतिक कार्य करते हुए आपको किस विचारों में रहना चाहिए? कृष्ण के विचारों में। हाँ, कृष्ण आपके मूल स्वामी है, कृष्ण आपके परम नियंता है, कृष्ण हमारे ओरिजिनल मास्टर है। तो ऐसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी भौतिक रूप से करोड़ों पति थे, वो दोनों ब्रदर। हाँ, ये जो पिक्चर है रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी 450 साल पहले बंगाल में, तो ऐसे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने क्या किया, फिर धीरे धीरे एक दिन रूप गोस्वामी जो इस बुक के ऑथर है उन्होंने राजा की नौकरी को छोड़ा और जो भी उनको धन मिला था, शास्त्र कहते हैं कि उस समय उनको इतना धन मिला कि एक बहुत बड़ी नाव भर के गोल्ड कॉइन्स से भरी हुई नाव उनको मिली, राजा के द्वारा धन से भरी हुई, इतने हजारों हजारों कॉइन्स थे। तो उन्होंने क्या किया, उसको बांटा। कैसे बांटा? आधी संपत्ति उन्होंने भगवान की सेवा में लगाई, ब्राह्मण आदि वैष्णवाज उसमें लगाई प्रचार के कार्य में, और जो आधी बची थी 25% अपने जो परिवार के लोग हैं उनके लिए और 25% उन्होंने सेविंग के लिए रखी, फ्यूचर के लिए। तो शास्त्र कहते हैं कि इस प्रकार से हमें अपने धन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो फिर रूप गोस्वामी ने बंगाल को छोड़ा और वो वृंदावन की ओर आने लगे। तो वृंदावन आते आते उनको श्री चैतन्य महाप्रभु इलाहाबाद में मिले, दशाश्वमेध घाट आप जाते वहां इलाहाबाद में, तो वो स्थान है जहाँ रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु मिले थे, और उन्होंने उनको फिर 10 दिन के लिए उन्होंने शिक्षा दी रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने, और चैतन्य महाप्रभु ने उनको कुछ आदेश दिए, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, कुछ उपदेश दिए। हाँ, और क्या थे वो? भक्ति प्रचारिया सर्व तीर्थ प्रकाशिला मदन गोपाल गोविंदेर सेवा प्रचारिला। उन्होंने कहा कि आप क्या करो, वृंदावन में जाओ और वृंदावन में जाकर जितने भी कृष्ण लीला स्थलियां हैं उनको ढूंढ के निकालो, क्योंकि वृंदावन में एक भी ऐसा स्थान नहीं था जहां जाकर आपको लगेगा कि अरे यहाँ कृष्ण प्रकट हुए थे, कोई भी ऐसा स्थान नहीं बचा था। ये सारे दिन जो आज हम देख रहे वृंदावन के मंदिर, सारी लीला स्थलियां, जो ब्रज भरा पड़ा है, वो केवल 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 ये 6 गोस्वामियों के कारण है। तो ऐसे रूप गोस्वामी वहां गए और उन्होंने क्या किया, हाँ, इन 6 गोस्वामियों ने मिलकर, 6 लोग थे 6 गोस्वामी, उन्होंने मिलकर सारे लीला स्थलियों का उद्धार किया, मदन मोहन और गोविंद देव मंदिरों की स्थापना की, विग्रहों की पूजा आदि की, और साथ ही साथ क्या किया, भक्ति शास्त्र प्रकाशिला, जितने भी भगवत भक्ति के शास्त्र हैं हाँ उनको स्थापित किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने इन 6 गोस्वामियों को आदेश दिया था कि आप वृंदावन जाकर केवल बैठो नहीं। जनरली लोगों को लगता है कि आध्यात्मिक जीवन को स्वीकारना एक आलसी व्यक्ति का काम है, जिनको कोई नौकरी वगैरह नहीं मिली या फिर जो बहुत आलसी है, अपना खान पान की व्यवस्था नहीं कर सकते, उन लोगों को क्या करना चाहिए, स्पिरिचुअल लाइफ को स्वीकार करना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करना चाहिए। या फिर ये सोचते हैं कि वही लोग आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करते हैं जो निकम्मे हैं, जो भौतिक रूप से कुछ करने के लिए योग्य नहीं है, निठल्ले हैं, ये मनोदृष्टि है। लेकिन वास्तव में कृष्ण भक्ति स्वीकार करने के बाद व्यक्ति वास्तव में एक्टिव हो जाता है, उसको 24 घंटे भी क्या पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं, उसके पास इतना कुछ है करने के लिए। भौतिक व्यक्ति, भौतिकता वाले व्यक्ति जो भौतिक कार्यों में मग्न है उसके तो इससे परे है, वो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि आध्यात्मिक जीवन में कितने कार्य हैं करने के लिए जिनका कोई अंत नहीं है। तो ऐसे ये गोस्वामी जब वृंदावन में आए 6 गोस्वामी, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया था, आप क्या करो, सारे मिलकर नाना शास्त्र विचार नैक निपुणो, कि सारे शास्त्रों को इकट्ठा करो और उन पर चर्चा करो, और सारे शास्त्रों में
क्योंकि जो सारे शास्त्र है, शास्त्र क्या है, श्रुति स्मृति पंचरात्रि, हाँ, जो वेद है, उपनिषद है, पुराण है, महाभारत है, रामायण आदि है, ये सारे मिलकर शास्त्र कहते हैं। हाँ, शास्त्र का मतलब है भगवान की वाणी। भगवान की जो वाणी है, इनसे सिंपल तरीके में हम भगवान की वाणी जब लिखित फॉर्म में आती है तो उसको क्या कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। तो जो भगवान की वाणी है वो शास्त्र है। तो ऐसे रूप गोस्वामी और ये सारे गोस्वामी वृंदावन में एकत्रित हुए हैं और चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि सारे शास्त्रों में चार चीजें दी गई हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चार चीजें ही केवल शास्त्रों में है, लेकिन आपको इससे परे चीज देनी है जो किसी ने निकाली नहीं है, और वो उस चीज को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे। वो क्या है, प्रेम पुमार्थो महान, प्रेम, लव, किसके प्रति, कृष्ण के प्रति। और ये चार चीजों में सारे लोग उलझे हुए हैं। धर्म, लोग धर्म क्यों करते हैं, धार्मिक कार्य क्यों करते हैं, दान देते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, कर्म कांड के यज्ञ, उपासना, पूजन, ये सब हवन आदि करते क्यों, उनके पीछे उनका बिल्कुल अंधा उद्देश्य है। धर्म इसलिए मैं कर रहा हूं जिससे मुझे क्या मिलेगा, अर्थ, अर्थ मीन्स लाभ मिलेगा। जैसे इसलिए तो लोग गाते हैं रोज सुबह सुबह शाम, जय जय जगदीश हरे, वो आरती में है क्या, सब में वही है। कष्ट मिले मिटे तन का, क्या है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, आगे क्या है, जय जगदीश, मतलब इससे परे पता ही नहीं है। तो धर्म करने का एक में लोगों का अंधा उद्देश्य है, वो क्या है, अर्थ। केवल अर्थ मीन्स भौतिक सेंस ग्रेटिफिकेशन, भौतिक भोग की चीजें मुझे चाहिए, मुझे इसी भौतिक जगत में ही बने रहना है। प्रभुपाद ने कहा कि ये भौतिक जगत में हम स्टूल पास करने के लिए आए हैं। हाँ, इस भौतिक जगत में हम किसके लिए आए हैं, मल को त्यागने के लिए आए हैं, क्योंकि ये रहने के लिए योग्य स्थान नहीं है। हाँ, इतना कष्ट आदि से भरा पड़ा, इतने उलझनों से भरा पड़ा है। तो शास्त्र भौतिक जगत की तुलना टॉयलेट से करते हैं, और प्रभुपाद ने एक लेक्चर में कहा कि हम यहाँ मल त्यागने के लिए आए हैं, तो वो मूर्ख व्यक्ति वो है जो मल त्यागने का स्थान है उसी में रहने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। जैसे पीग है, जो हॉग है, पीग, सुअर, जहां मल त्यागते उसी में लेटता रहेगा, खाता रहेगा, बैठता रहेगा, पीटता रहेगा, बाहर जाने की सोचेगा ही नहीं। जैसे इंद्र के साथ हुआ था, इंद्र को शाप मिला, सुअर बना, और उसी में आनंद मौज ले रहा है, कितना जॉयफुल लाइफ है। हाँ, कि इससे बढ़कर लाइफ स्टाइल हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा आए चार मुख वाले अपने हंस के ऊपर, अरे का मूर्ख इंद्रा, प्लीज कम, चलो चलो। वो कहते हैं कि आ तो सकता हो, लेकिन बताओ गरम गरम स्टूल अवेलेबल है स्वर्ग में। तो ऐसी सिचुएशन है। तो हमारी ये स्थिति है कि हम इस स्थान में इस प्रकार से रहना चाहते हैं। तो धर्म का पालन भी हम इसलिए कर रहे हैं कि हम इसी जगत में रहना चाहते हैं, इसी कष्टमय शरीर में रहना चाहते हैं, इन्हीं विपदाओं में बैठना चाहते हैं, हाँ, ताकि इंद्रिय तृप्ति करो पशु के समान। तो धर्म किस लिए करते हैं लोग, अर्थ के लिए। किसके लिए, तो अर्थ का मतलब है बहुत सारी चीजें हैं। जब आपके पास अर्थ आता है, धन आता है, फैसिलिटी आती है, धन आता है मेनली, तो क्या है तीसरी चीज, धर्म, अर्थ, फिर है काम। काम मीन्स काम वासना, या फिर काम, ये बहुत बड़ा शब्द है। काम वर्ड क्या है, काम को लस्ट कहते हैं। और दूसरा इसका मीनिंग क्या है, जो भी भौतिक इच्छा, मटेरियल डिजायर, इस जगत में भोग करने की जो भौतिक इच्छा है, नेम, फेम, अपनी ग्लोरीज आदि के लिए, ये जो भी भौतिक इच्छाएं हैं उसको काम कहा गया है। यही संस्पर्श जा भोगा दुख एवं एवते। तो गीता में कृष्ण कहते हैं कि ये जो काम है इससे कोई सुख नहीं आएगा, इससे जीवन में क्या आने वाला है, दुख एवं एवते, निश्चित रूप से दुख आएगा। जिसने भी ट्राई किया है, आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा है कौन्तेय अर्जुन, इसका आदि भी है और इसका अंत भी है। भोग कोई परमानेंट है, कौन सा भोग परमानेंट है, नहीं है। हाँ, तो भोग कुछ क्षण के लिए है, तो इसका आदि भी है और अंत भी है। इसलिए कृष्ण कहते हैं न तेषु रमते बुधा, बुधा में जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस भौतिक इसमें मग्न नहीं होता, रममान नहीं होता, वो सोचता है हायर जीवन क्या है, हायर टेस्ट क्या है, हायर रसा क्या है। तो व्यक्ति धर्म इसलिए करता है ताकि अर्थ की प्राप्ति हो। हाँ, लोग इसलिए तो धार्मिक कार्य करते हैं और कितने प्रकार के तावेज और हाथ में कितने प्रकार के धागे और पता नहीं क्या क्या करते हैं। हाँ, तो क्यों, धन आए, और धन आएगा तो धन 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 खाली थोड़ी रहेगा, धन पॉकेट में होता तो इतना आनंद नहीं आता जब हम उसको क्या करते हैं, खर्च करते हैं और दिखाते हैं सबको। आप दिखाओगे नहीं हाँ तो आनंद नहीं अनुभव करोगे। अर्जुन ने तो वही कहा गीता के पहले दूसरे अध्याय की शुरुआत में, आप तो कह रहे हो युद्ध करो ये सारे मारे जाएंगे और फिर मेरे पास पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिलेगा, कोई शत्रु नहीं बचेगा, पूरे पृथ्वी का मैं किंग होऊंगा, होल सोल किंग। हाँ तो मैं दिखाऊंगा किसको, कोई बचेगा नहीं कि मैं राजा हूं, मुझे देखने वाले भी थोड़े चाहिए, तब मैं एंजॉयमेंट अनुभव करूंगा, आनंद अनुभव करूंगा। क्योंकि हमारी स्थिति क्या है, कोई चीज हमारे पास होती है और जब तक दूसरा व्यक्ति उसको देख के जलता नहीं है तब तक हमारे हृदय में दिव्य आनंद की अनुभूति नहीं होती। चाहे हम हमारी कार है, हमारे मोबाइल से, हमारे गैजेट्स है, हमारा घर है, फिर हमारा भौतिक सुविधाएं हैं, तब तक हमें वो आनंद नहीं देती जब तक हम दूसरे हृदय दूसरे व्यक्ति के हृदय को जलाते नहीं, हम बॉयल नहीं करते। तो ऐसे धर्म अर्थ काम, अर्थ के बाद काम में हम मग्न होते हैं और फिर काम से भी पक जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, शरीर परेशान करने लगता है, रिलेशन ब्रेकअप्स होने लगते हैं, बच्चे बातें नहीं सुनते, कोई वैल्यू नहीं देता है, कोई पूछता नहीं है, बात नहीं करना चाहता हमसे, तब सोचता नहीं अभी ना क्या करना चाहिए, चार धाम की यात्रा में निकलना चाहिए तो मोक्ष प्राप्ति की भावना को वो सोचने लगता है कि सोचता अरे बहुत हो गया अभी, हाँ जीवन ऐसे गवा दिया, मोक्ष के लिए निकलता है अभी कहाँ मोक्ष प्राप्त करेगा। और जनरली लोगों का अंडरस्टैंडिंग क्या है, मोक्ष का मतलब है लीन हो जाना, भगवान में मिल जाना, जिसको टेक्निकली सायुज्य मुक्ति कहा गया है, पांच प्रकार की जो मुक्तियां हैं उनमें। तो मोक्ष का मतलब है व्यक्ति जीवन से पक गया है, परेशान हो गया है और अभी उसके पास आनंद देने के लिए शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, मन भी साथ नहीं दे रहा है, और जो दूसरे लोग हैं, जो पत्नी है, बच्चे हैं, संबंधी आदि हैं, वो भी उनके सामने भी इसका कोई वैल्यू नहीं रहा है, ना घर में ना बाहर ना कुछ, तो अभी सोचता नहीं अभी मैं परेशान हूं। तो ये परेशानियों से क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए, उसी को क्या कहा गया है, मोक्ष कहा गया है। तो ऐसा हम चाहते, ये हमारा दृष्टिकोण है मोक्ष का, लेकिन ये मोक्ष नहीं है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा सारे जीव केवल इस धर्म अर्थ काम मोक्ष में लगे हुए हैं, इसमें इनका कुछ बेनिफिट नहीं है, असली लाभ नहीं है, और ये अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति या जीवन का जो असली गोल है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। बेचारे केवल पागल की तरह इस भौतिक जगत में मंडराते रहेंगे, घूमते रहेंगे और दुखी रहेंगे अंत तक। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी और इच्छे गोस्वामी को आदेश दिया कि आप ये चार धर्म अर्थ काम मोक्ष के परे एक चीज है, वो क्या करो, भक्ति के ग्रंथों के माध्यम से स्थापित करो। जो शास्त्रों में ये पांचवी चीज का वर्णन है, और वो क्या है, प्रेम पुमार्थो महान। क्या है, प्रेम कृष्ण के लिए जो प्रेम विकसित करना अपने हृदय में। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा सारे शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है, तो आप सारे शास्त्रों से इसका प्रमाण के साथ उसको स्थापित करो और भक्ति शास्त्रों का निर्माण करो। कौन से शास्त्रों का, तो अलग अलग शास्त्र अलग अलग चीजों को स्थापित करते हैं। तो भक्ति शास्त्र भक्ति को जो शास्त्र स्थापित करते हैं, सर्वोच्च जो प्रेम की पराकाष्ठा है या जीवन का जो उद्देश्य है कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम विकसित करना, उनकी स्थापना करने के लिए छह गोस्वामियों को भेजा था और विशेष रूप से रूप गोस्वामी को। और ऐसे ये रूप गोस्वामी और ये छह गोस्वामी वृंदावन के जंगल में आए, जहाँ शेर चीते भालू सब रहते थे, ऐसे स्थान में रहकर इतना हार्ड लाइफ था, वहां हार्ड लाइफ स्टाइल था उस स्थान में वो रहे। कंथा कोपिन श्रितो, उनके पास वस्त्र आदि नहीं थे, छोटा सा कोई कोपिन सा छोटा सा गमछा जैसा कुछ टॉवेल जैसा बांधते थे और ऊपर एक छोटा सा वस्त्र लेते थे, वही उनके पास था। बल्कि कुछ महीने पहले वो राजा थे बंगाल के, ऐसा जीवन को त्याग कर, क्यों, क्योंकि उनके प्रति कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम था। क्योंकि भौतिक आसक्ति जब तक हमारे हृदय में है तब तक भौतिक चीजों को हम त्यागेंगे नहीं, मुश्किल है, नहीं हो पाता हमसे। हाँ, तपस्या करने की भावना भी नहीं आ पाती। जितना अधिक कृष्ण के प्रति प्रेम या कृष्ण के प्रति सेवा की भावना हमारे हृदय में होगी, उतना ही मात्रा में हम इस भौतिक जगत से अनासक्त रहेंगे। हाँ, जैसे ही कमल का पुष्प कीचड़ या जल में है लेकिन फिर भी कभी उसका स्पर्श नहीं करता, उससे अलग ही रहता है। हाँ, तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को वृंदावन भेजा, तो रूप गोस्वामी उनके हृदय में सब जीवों के लिए दया थी और दूसरा चैतन्य महाप्रभु की ऑर्डर आज्ञा, इनके कारण वो वृंदावन आते हैं और वृंदावन में भक्ति शास्त्रों को स्थापित करते हैं, लिखते हैं और क्या करते हैं, सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण उनसे सारे शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त किए थे और वृंदावन में आकर उन्होंने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया और उन सारे अध्ययन शास्त्रों का जो अध्ययन था उसको उन्होंने समरी फॉर्म में प्रेजेंट किया। किस फॉर्म में? सार, एसेंस, सार के रूप में। और वो सार क्या है? उपदेशामृत। कितने श्लोक है इसमें? 11 श्लोक है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने अपनी सारी शिक्षाओं को 8 श्लोकों में प्रेजेंट किया, जिसको क्या कहते हैं? शिक्षाष्टकम। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आध्यात्मिक जीवन केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं है कि थोड़ा सा एक दो माला जप करो और वेंसडे थोड़ा छुट्टी ऑफिस में तो आके थोड़ा प्रवचन सुनो और एक हफ्ता फिर भूल जाओ। नहीं, हमें जाकर भी क्या करना चाहिए? सिंसियरली रीडिंग करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे हम बहुत ईगर हैं भौतिक न्यूज पेपर आदि सबको पढ़ने के लिए, तो वैसे ही हमें स्पिरिचुअल जो बुक्स है उनकी विदाउट फेल रोज हमें रीडिंग करना चाहिए। रीडिंग करने से क्या होगा कि एक तो स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक कंसेप्ट है वो क्लियर होंगे और हमारा फेथ कृष्ण के लिए, प्रोसेस के लिए और वैष्णव के लिए स्ट्रांग होगा। तीनों के लिए रीडिंग करने से हमारा जो फेथ है, श्रद्धा है, वो स्ट्रांग होती है और स्पिरिचुअल लाइफ में फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं। हाँ, तो ये बहुत आवश्यक है। अध्यात्म का मतलब इतना ही नहीं है। अध्यात्म का मतलब जनरली लोग यही सोचते हैं, किसी साधु के पास जाओ और थोड़ी देर सुनो और साधु अपने मठ में और हम अपने खाट में या फिर घर में, बस यही आध्यात्मिक जीवन। नहीं, आध्यात्मिक जीवन घर जाके हमें उसको गंभीरता से लेना चाहिए। तो ऐसे जिस प्रकार से व्यास देव ने सारे शास्त्रों की रचना की और लेकिन सारे शास्त्रों के बाद उन्होंने आखिरी एक ग्रंथ प्रेजेंट किया जो सारे शास्त्रों का निचोड़ है, वो क्या था? श्रीमद् भागवतम। तो उसी प्रकार से रूप गोस्वामी ये उपदेश अमृत देते हैं। ये कोई छोटे मोटा ग्रंथ नहीं है, ये इनफ है। आपको भगवान के धाम वापस जाने के लिए क्या है? इनफ है। इतनी इसको सूत्र फॉर्म में दिया है सारी जो शिक्षा। प्रभुपाद कहते हैं ये जो उपदेश अमृत है इसकी जो शिक्षा है आध्यात्मिक जीवन के स्टार्ट से लेकर एंड तक। आपकी शुरुआत आध्यात्मिक जीवन की करनी है और आध्यात्मिक जीवन का जो सर्वोच्च बिंदु है, सर्वोच्च अवस्था है, उसकी प्राप्ति है कैसे करनी है या वो क्या अवस्था है, उसकी शिक्षा रूप गोस्वामी ने इस ग्रंथ में दी है। उसी को टेक्निकल भाषा में 3 शब्द यूज किए हैं, क्या है? साध्य, साधना और प्रयोजन। तो उसी को कहते संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, कि भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है और उस संबंध को स्थापित करने के लिए, संबंध को अनुभव करने के लिए फिर मुझे क्या करना चाहिए वो, और फिर उस संबंध का पराकाष्ठा क्या है? प्रेम कृष्ण के प्रति। जैसे किसी नव विवाह, किसी युवती का किसी युवक के साथ विवाह हो जाता है तो उससे क्या होता है? संबंध स्थापित हो गया, उसको पता चला कि मैं पत्नी हूं और ये पति हैं, तो वो संबंध और मैच्योर प्रगाढ़ होने के लिए, गाढ़ होने के लिए क्या है फिर? सेकंड स्टेप क्या है? एक दूसरे को वो सर्व करे, सेवा करे, तो उससे अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा और एक दूसरे के प्रति प्रेम या अटैचमेंट डेवलप होगा और फाइनली क्या है? स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट या फिर पुत्र की प्राप्ति होगी, बाय प्रोडक्ट जिसको कहते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान के साथ हमारा जो संबंध है, जीवेरा स्वरूप है कृष्ण रणित्य दास, हम कृष्ण के सेवक हैं और वो जितना ही इनफ नहीं है कि हाँ मैं भगवान का दास हूँ, ये तो हमने सुना, लेकिन वो जानने के लिए क्या करना होगा? सेवा करनी पड़ेगी। और वो सेवा कहाँ से शुरू होती है? जिह्वा से, टंग के अग्रभाग से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे जब हम सेवा करते हैं, सब प्रकार से सेवा करते हैं कृष्ण के लिए, उनका नाम उच्चारण करके, उनके ग्रंथों का वितरण करके, उनके भक्तों की सेवा करके, लोगों को प्रचार आदि करके, लोगों को कृष्ण भक्ति प्रदान करके, हाँ, जब हम ये सेवा करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे न चाहते हुए भी कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में आकर्षण डेवलप होने लगेगा। ये स्वाभाविक है, नेचुरली है। तो ऐसे रूप गोस्वामी ये संप्रदाय के लीडर हैं। क्या है? लीडर हैं। बल्कि रूप गोस्वामी से आयु में उनके भाई बड़े थे सनातन गोस्वामी, और रूप गोस्वामी के गुरु कौन है? सनातन गोस्वामी। फिर भी वो प्रमुख नहीं माने गए छह गोस्वामियों में, हाँ, लेकिन कौन प्रमुख है? रूप गोस्वामी। क्यों? क्योंकि रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के हृदय को जानने वाले हैं, साक्षात भगवान के हृदय को जानने की क्षमता रखते हैं। इसलिए आप मंगलाचरण पढ़ते हो भगवद गीता में, या कोई भी लेक्चर देते हैं, तो उसमें एक एक एक, एक प्रार्थना हम बोलते हैं जो नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखी हुई है। क्या है वो? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम एन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, चैतन्य महाप्रभु के मन का जो अभीष्ट है, इच्छा है, अभिलाषा है, हाँ, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम एन भूतले, उसको जिन्होंने एस्टैब्लिश किया इस भौतिक जगत में, स्वयं ऐसे रूप गोस्वामी कब मेरे ऊपर कृपा करेंगे? अपने चरणों में मुझे आश्रय प्रदान करके। तो इस प्रकार से वो जानते थे, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्यगण कहते हैं कि ये जो रूप गोस्वामी है उनको जानना का कोई कोशिश करता है, रूप गोस्वामी को जानना मीन्स आपको पहले चैतन्य महाप्रभु को जानना होगा। किसको जानना होगा? किसको जानना होगा? हाँ, कितने लोग जानते हैं चैतन्य महाप्रभु को? हाथ ऊपर कीजिए। नाम तो सुना है ना सबने? जिन्होंने सुना है या बेसिक थोड़ा जानते, इसका मतलब आप जानते हैं चैतन्य महाप्रभु को। तो चैतन्य महाप्रभु को जानते, जानना मीन्स उनके हृदय को जानना, और वो केवल रूप गोस्वामी जानते थे। और क्या चीज चलती थी रूप चैतन्य महाप्रभु के हृदय में? ये रूप गोस्वामी ने जाना। और तीन चीजों को जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ आए थे, जो किसी को पता नहीं था। और वो किसको पता था? केवल रूप गोस्वामी को। इसलिए कहा गया है कि ये उनके हृदय को पढ़ते हैं, हृदय को जानते हैं। हाँ, तो वो तीन चीजें क्या थी? चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, श्री राधाय प्रणय महिमा की दृशा, कि पहली चीज ये थी जो रूप गोस्वामी जानते थे चैतन्य महाप्रभु के हृदय से, कि ऐसे कृष्ण द्वापर के अंत में जब आए, और उसके बाद उनकी तीन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई, तीन नई इच्छाएं उनके हृदय में जागृत हुई। इसलिए वही कृष्ण कलयुग में गौर वर्ण या गोल्डन अंग कांति अपने शरीर का कलर धारण करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, और तीन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आते हैं। वो क्या थी? कि व्हाट इज द राधा रानी लव, राधा रानी का प्रेम क्या है? पहली ये चीज थी जो चैतन्य महाप्रभु जानना चाहते थे। और दूसरा क्या था? व्हाट इज माय ब्यूटी, मेरा सौंदर्य क्या है? हाँ, ये कृष्ण ये चीज नहीं जानते, अपने सौंदर्य के बारे में कृष्ण नहीं जानते कि मैं इतना सौंदर्यवान कैसे हूं। एक दिन कृष्ण अपने ग्वाल सखाओं के साथ जा रहे थे बछड़े चराने के लिए, तो उस समय जो गाय का जो खुर होता है, जब बारिश के समय में उसमें पानी एकत्रित होता है ना, तो भगवान जा रहे थे, तो ऐसे खुर में जो पानी एकत्रित हुआ था इतना सा छोटा सा गड्ढे में, तो भगवान जाते जाते उन्होंने नीचे देखा, नीचे देखते ही उन्होंने गड्ढे में अपना प्रतिबिंब देखा, और उन्होंने कहा को चमत्कारिक पुरुष है, ये चमत्कारिक बच्चा कौन है, इतना सुंदर कौन है ये। वो रुक गए, और रुक के वो देखने लगे, और फिर बाद में आगे चले गए। तो ये घटना है द्वारका में भी हुई थी, वृंदावन में हुई थी, मथुरा में भी हुई थी। तो इस प्रकार से कृष्ण भी अपने सौंदर्य के बारे में पूर्ण रूपेण जानते नहीं है। वो कहते क्या ऐसा सौंदर्य जिससे सारा जगत मुझसे आकृष्ट हो रहा है, ब्रज की हर वस्तु मुझसे आकृष्ट हो रहे हैं। और तीसरी चीज क्या थी, मेरा सौंदर्य को देखकर ये जो श्रीमती राधिका है या वृंदावन के जो भक्त है उनको कौन सा सुख मिलता है, वो सुख मैं अनुभव करना चाहता हूं। क्या था उनका इच्छा, इसको सिंपल वे में कैसे बोलेंगे कि मेरे भक्तों को मेरी सेवा करके इतना आनंद, क्या आनंद मिलता है जिसके कारण वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। उनको जो आनंद मिलता है वो आनंद मुझे अनुभव नहीं होता, वो आनंद मैं अनुभव करना चाहता हूं। ये कृष्ण की इच्छा नहीं, पूर्ति नहीं हुई थी। इस इच्छा को जानने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। उसको सरलता से समझ सकते हैं कि कोई माँ अपने बच्चे की सेवा करती है तो वो जितना सेवा करते करते देखते हैं, अरे बच्चा बड़ा खुश है, कितना हंस रहा है, खेल रहा है, माँ को लगता है इसको कितना आनंद मिल रहा है। तो फिर माँ को वो आनंद जो बच्चे को मिल रहा है वो तो अनुभव नहीं कर सकती थी, नहीं कर सकती। माँ को क्या बनना पड़ेगा, बच्चा बनना पड़ेगा। और बच्चे को बच्चा देखता है माँ के मुख को, अरे माँ तो मुझे देख कर रो रही है, इतना सुख अनुभव कर रही है मेरी सेवा करके। तो माँ को जो आनंद मिल रहा है वो अनुभव करना है बच्चे को, तो बच्चे को क्या बनना पड़ेगा, माँ बनना पड़ेगा। हाँ, तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण भी जब देखते हैं कि अरे मेरी सेवा में क्या ऐसी चीज है, मेरी सेवा करके भक्तों को इतना अधिक आनंद मिलता है, वो आनंद मैं चाहता हूँ। हाँ, तो ये सब चीजें चैतन्य महाप्रभु के बारे में रूप गोस्वामी जानते थे और उसी चीज की शिक्षा को रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथों के माध्यम से स्थापित किया। तो ऐसे रूप गोस्वामी विशेष आचार्य हैं, स्पेशल आचार्य हैं, स्पेशल डिवोटी हैं। क्यों है, क्योंकि रूप गोस्वामी को रसाचार्य कहा गया है, रस के आचार्य। उन्होंने दो ग्रंथ लिखे जिनका नाम था उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु। कितने लोग नाम जानते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु, और दूसरा था उज्ज्वल नीलमणि। तो ये जो दो ग्रंथ भक्ति के जो भगवान के प्रति रस की भावनाएं हैं उनको विशद रूप से वर्णन करते हैं। उसी को कितने प्रकार के रस है भगवान के प्रति, हमारे जो संबंध उन रसों में स्थापित होते हैं, पांच प्रकार के, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। ये जो पांच प्रकार के रस हैं इनके द्वारा हम भगवान उनके साथ अपने संबंध को स्थापित करते हैं और उसी मूड से भगवत सेवा करते हैं। तो ये बहुत उन्नत चीजें हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। हमें तो अभी भौतिक भोग का जो रस है वही छूट नहीं रहा है। अभी कई लोग तो चाय का रस ही नहीं उनसे छूट रहा है, तो अभी भगवान की भक्ति के रस को कैसे पकड़ेंगे, है कि नहीं? या फिर बाकी डिफरेंट जो रसास हैं, जो शराबी को एक एक प्रकार का रस टेस्ट अनुभव होता है। क्या है उसका, शराब से जो रस अनुभव होता है, जो टेस्ट अनुभव होता है, वो उसके लिए सर्वोच्च है। तो इसलिए ये जो आध्यात्मिक रस है जिनका वर्णन शास्त्र करते हैं, ये केवल आपके बुद्धि के द्वारा या आपके मन के द्वारा और शास्त्रों को पढ़ के आप अनुभव नहीं कर सकते, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा, अभ्यास है न तो कौनते या वैराग्य न चित रहे थे, कि अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। और जितना आप प्रैक्टिस करते हो, इसलिए इन रसों को, भक्तिमय रसों को केवल टेस्ट के द्वारा ही हम अनुभव कर सकते हैं, टेस्ट के माध्यम से। और ये टेस्ट डेवलप कैसे होगा, सबसे पहले व्यक्ति को क्या होना चाहिए, भक्ति के प्रोसेस में फेथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लाउडली क्या होना चाहिए, श्रद्धा, फेथ। तो ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए कि वास्तव में मेरा जीवन भगवान की सेवा करने के लिए बनाया गया है मेरा जीवन, क्योंकि मैंने तो हजारों हजारों जीवन जन्म ले लिया है, हजारों जीवनों में मैंने वही धक्के खाए, मेट्रो के डीटीसी बस में हजारों जीवन भर में चला गया हूँ, हजारों बार डिफरेंट जॉब्स मैंने चेंज किया है, कितनी बार कितने शहरों में मैंने जन्म लिए होंगे, कितनी बार मैंने शादियां की होगी, कितनी बार मैंने बच्चे पैदा किए होंगे, कितने बार मैंने इस जगत का भ्रमण किया होगा, है ना। लेकिन अभी हमें जैसे ये पता चला है जीवन प्राप्त होने के बाद कि हाँ, कृष्ण की सेवा करना, भगवान के पास वापस जाना, ये जीवन का एक नया लक्ष्य है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उसकी तैयारी करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आवश्यकता क्या है, फेथ। क्या आवश्यक है, फेथ, श्रद्धा। और श्रद्धा कैसे विकसित हो सकती है? साधु संघ से। और क्या हो सकता है? फेथ, आपका फेथ हो जाता है किसी चीज में कि जो पेप्सोडेंट है वही मेरे दांत क्लीन कर सकती है, टूथपेस्ट। कैसे होता है फेथ? बार बार आप सुनते हो, बार बार एड को पढ़ते रहते हो, और जो फिर बाकी उनसे सुनते हो जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, है कि नहीं? तो वैसे ही है, फेथ डेवलप होगा जब आप भक्तों का एसोसिएशन करते हो, भक्तों से सुनते हो, शास्त्रों को पढ़ते हो, और घर में क्या करते हो? प्रैक्टिस। और वो प्रैक्टिस क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्ति में रस को तभी अनुभव किया जा सकता है जब सबसे पहले आपके पास फेथ, श्रद्धा रूपी धन चाहिए, श्रद्धा। हाँ, इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं ज्ञान किसको प्राप्त होगा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। नॉलेज उसी को प्राप्त होगा जिसके हृदय में स्ट्रांग फेथ है, कन्विक्शन है, स्ट्रांग फेथ, श्रद्धा है। तो पहले तो श्रद्धा होना चाहिए प्रोसेस के लिए, और दूसरा क्या है? साधना। दूसरी चीज क्या है? साधना मीन्स प्रोसेस को रिजिडली फॉलो करना है। क्या करना है? फॉलो करना है। तो श्रद्धा के साथ आप प्रोसेस को, जैसे कहा गया है शास्त्र के द्वारा, गुरु के द्वारा और साधु के द्वारा, इन तीनों के द्वारा, और उसको जब हम फॉलो करते हैं, साधना को पकड़ते, रिजिडली फॉलो करते प्रोसेस को, तो फिर तीसरी चीज क्या है? टेस्ट, रसा, रस का आस्वादन। भक्ति में रस का आस्वादन मीन्स भक्ति में आप आनंद की अनुभूति करोगे, नहीं तो आप कहोगे कि अरे माला तो मैं एक दो साल से कर रही हूं और कर रहा हूं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि ये एक 10 ग्राम की माला है, वो बहुत हैवी महसूस हो, लेने से पहले 1000 बार सोचता हो जब करो कि नहीं करो। पहले मन क्या करता है? कहते नहीं नहीं अरे मत करो, कितना बहुत ट्रबल है, टेंशन है, कष्ट है। हाँ, क्योंकि हम इतने, जितना हृदय में भौतिक इच्छाएं होगी, भौतिक भोग करने की लालसा होगी, उतना ही हरि नाम लेना हमारे लिए क्या होगा? कष्टप्रद होगा, होगा ही नहीं। भगवान का नाम ये जीवा उच्चारण कर ही नहीं सकती। लेकिन उस भोग की भावना को हटाने के लिए हमें फोर्सफुली क्या करना होगा? जीवा से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए वो जो भक्तिमय रस है, भक्तिमय आनंद है, उसको इस प्रकार से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसी कारण से रूप गोस्वामी ने भक्ति कैसे करनी चाहिए उसके लिए एक लॉ बुक बनाया। लॉ बुक होता है ना, उसकी गाइड बुक जिसको कहते हैं, हाँ वो क्या है? एक गाइड बुक है भक्ति रसामृत सिंधु। और वही गाइड बुक जब समरी फॉर्म में आता है, सूत्र रूप में आता है, तो उसी को क्या कहते हैं? उपदेश अमृत। तो उपदेश अमृत को तब तक कोई व्यक्ति अप्रिशिएट नहीं कर सकता जब तक वो भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन नहीं करता। जिसने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का अध्ययन किया है वो ये उपदेश अमृत को क्या कर सकता है? अप्रिशिएट कर सकता है, हाँ समझ सकता है। क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु जिसको श्रील प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, नेक्टर ऑफ डिवोशन, तो वो जो ग्रंथ है वो गाइड बुक है भक्ति के लिए। क्योंकि डिवोशन एक साइंस है, प्रभुपाद ने का विज्ञान है, और जहां विज्ञान साइंस मतलब वह हर चीज का डेफिनेशन चाहिए, है कि नहीं? साइंस तब तक पूरा नहीं जब हर एक चीज का वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं देता, हर एक को डिफाइन नहीं करता, डेफिनेशन नहीं देता। तो जो भक्ति रसामृत सिंधु है वो भक्ति की व्याख्या करता है, भक्ति के हर अंग का डेफिनेशन देता है कि भक्ति का अर्थ क्या है, साधना भक्ति का मतलब क्या है, वैदिक भक्ति का मतलब क्या है, राधा रागानुगा भक्ति का मतलब क्या है, प्रेम भक्ति का मतलब क्या है, भाव भक्ति का मतलब क्या है, ये सब का डेफिनेशन दिया गया है। हाँ, तो ऐसे भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ ये सारी चीजें हमें प्रदान करता है। बल्कि भक्ति रसामृत सिंधु बहुत बड़ा है, कई श्लोकों से बना है, हाँ, लेकिन उसी को समराइज शिक्षा और रूप गोस्वामी उपदेश अमृत का जो ग्रंथ है उसके माध्यम से हमें करते हैं। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि ये जो ग्रंथ है इसको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए, और जितना क्लियरिटी के साथ इस ग्रंथों का हम समझते हैं, बहुत छोटा है, दिखने में कितना है? बहुत छोटा, कितने पेजेस हैं? अभी 100 पेजेस हैं,
100 पेजेस, हाँ, लेकिन इसको समझने के लिए 100 लाइफ टाइम्स चाहिए, हाँ, इतना मूल्यवान है। तो इसलिए भक्ति क्या है, भक्ति का मतलब ही है कि हमारी एक्टिविटी फेवरेबल हो कृष्ण के लिए और इंटेंशन भी कृष्ण की सेवा के लिए फेवरेबल हो, ये दो चीजें। हाँ, फेवरेबल मतलब क्या कहेंगे, फेवरेबल को अनुकूल होनी चाहिए। भक्ति का अर्थ है जो भी हमारे कार्य हैं कृष्ण की, कृष्ण के प्रसन्नता के अनुकूल होने चाहिए, और केवल कार्य ही नहीं लेकिन इंटेंशन भी, कौन से इंटेंशन से मैं कर रहा हूं। हाँ, जैसे हम लोग यहाँ आते हैं तो कौन से इंटेंशन को लेकर आप यहाँ आए हो, है ना, अलग अलग इंटेंशन लेके आता है व्यक्ति, कहते चलो अरे थक जाता हूँ ना, जब बीच में लंच ब्रेक होता है क्या, अकेले बैठने से क्या आनंद आएगा, थोड़ा वहाँ कीर्तन होता है, कथा होता है, थोड़ा प्रसाद होता है, थोड़ा चलो रिफ्रेश होके आता हूँ, ये एक इंटेंशन है कि नहीं। दूसरा कि नहीं नहीं मुझे जाना होगा क्योंकि ये मूल्यवान जीवन है, आई हैव टू लर्न समथिंग, हाँ कुछ सीखना है, कुछ प्रैक्टिस करना है और कुछ भगवान की ओर आगे बढ़ना है, इस इंटेंशन के साथ आते हैं फिर हम उसको स्वीकार करते हैं। तो इसलिए भक्ति का ये मतलब है कि हमारे कार्य भी किसके अनुकूल हो, कृष्ण की सेवा के, और हमारा जो इंटेंशन है, जिस भावना को, मनोवृत्ति को लेकर हम यहाँ आते हैं, वो भी उचित हो, अनुचित ना हो, और कृष्ण को प्रसन्न करने के योग्य हो। हाँ, तो इसलिए ये जो उपदेश अमृत टाइटल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका वर्णन हम फिर अगले क्लास में कर सकते हैं। उपदेश का मतलब ही है इंस्ट्रक्शन, और अमृत का मतलब है क्या है, इसेंशियल, या फिर नेक्टर भी होता है। तो अगली बार हम और भी इसकी विशद व्याख्या करेंगे और फिर समझेंगे कि वास्तव में उपदेश कौन से हैं, उपदेश कौन से हमें स्वीकार करने चाहिए, कौन व्यक्ति क्वालिफाइड है उपदेश देने के लिए, कौन व्यक्ति अनक्वालिफाइड है उपदेश नहीं देने के लिए, और हमारे प्रैक्टिकल जीवन में हमें कौन से उपदेश लेने के लिए हमें तत्पर होना चाहिए। और शिष्य का महत्वपूर्ण एक्टिविटी है कि शिष्य या जो साधक है वो हमेशा ईगर रहता है, लालायित रहता है इंस्ट्रक्शंस को स्वीकार करने के लिए। हाँ, तो इन चीज़ों की हम चर्चा फिर अगले वेंसडे, तो हम शायद हम यहाँ नहीं हैं, उसके अगले वेंसडे हम कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री उपदेश अमृत की, श्रील रूप गोस्वामी की, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कमेंट, समीक्षा, तो आप पूछ सकते हैं, या मैं प्रश्न पूछूं?
लेकिन हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, सरस्वती हम समय दे रहे हैं हमारे को इस बुक को प्रिंट करने के लिए, और आने वाले कुछ हफ्तों में उसको हम समझ सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी कि सभी भक्त घर से पढ़ के आए पहले, ताकि हम लाभ ले पाए, इसको समझ सके, अच्छे से प्रश्न पूछ सके, ताकि प्रभु संघ का लाभ मिल पाए। तो कितने भक्त जो है नेक्स्ट टाइम इसको पढ़ के आना चाहेंगे, थोड़ा सा
पहले किसके पास है
ये बुक अवेलेबल है,
बुक यहाँ अवेलेबल है, जिनके पास नहीं है वो ले सकते हैं यहाँ से, तो सभी पढ़ के आ सकते हैं कृपा करके, तब पूरा लाभ ले पाएंगे हम। नेक्स्ट टाइम जो है रथ यात्रा है, तो पवजी रथ यात्रा में जा रहे हैं, अगले बुधवार पवजी नहीं आएंगे, उसमें धनते कृष्ण लोग भी आएंगे, तो उसके नेक्स्ट बुधवार से पवजी को स्टार्ट करेंगे, तो आपके लिए 15 दिन का समय है पढ़ने के लिए, पूरा समय मिला है पढ़ने के लिए, पूरा लाभ ले सकते हैं। तो हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, और विशेषकर इस बात के लिए कि प्रभु जी ने काफी हमें कमिट किया है इस पूरी बुक को कवर करने के लिए, काफी समय दे रहे हैं प्रभु जी, इतने व्यस्त समय निकाल के प्रभु काफी बुक्स लिख रहे हैं, कुर्सी बढ़ाने के लिए प्रभु, और काफी बुक्स लिख रहे हैं, टाइम निकाल के आ रहे हैं, तो पूरा लाभ लें उसका, और हम धन्यवाद करेंगे प्रभु जी का, उत्साह से सब बोलेंगे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा। तो सभी के लिए काशी प्रसाद की व्यवस्था है।
धन्यवाद। ऑफिस में बिजी थे। सभी एडमिशन ले गए। हो गया
मैं फॉर्म भरना पड़ेगा। अच्छा
अच्छा,
तो चेक ले फोन के
बाद। ठीक ठीक,
हम आए थोड़ी देर पहले से आ गए थे।
नहीं नहीं नहीं, मैं 10 मिनट पहले आया था। 10 15 मिनट
कभी वो था गीला हो जाए तो बता, यही ठीक है। फिर अंदर भी गए थे।
नहीं ठीक है, समय में आ गए थे।
एक
से पहले आए थे।
हमारे को डाइट का लेना, डाइट कोर्स है। जैसे बी एड होता है ना,
हाँ,
ट्वेल्थ के बाद ही लेना बी एड टाइप।
अच्छा,
फ्यूचर के लिए।
तो सीए के लिए ट्राई कर रहे हैं, बेस्ट है वो सब। झमेले में क्यों पढ़ना है,
आगे नौकरी हुई तो वैसे शादी हुई तो वैसे मना करते हैं। बहुत टाइम लगता
है। और वो
बेस्ट है।
नहीं नहीं,
सर्विस बहुत लंबी है, मोटिविटी
और सर्विस भी है। और क्यों कॉम्प्लिकेशन में जाना है, डिवोशनल लाइफ बर्बाद। बेस्ट क्या है ना, किसी भी लेडी के लिए टीचर बनना, टीचिंग आस्पेक्ट। मेरा पर्सनल अनुभव है, जिन्हें भी डिवोटीज को देखा है उनका बेस्ट स्पिरिचुअल लाइफ चलता है। अदरवाइज स्पिरिचुअल लाइफ स्पॉइल होना शुरू होता है विद इन 2-3 इयर्स। बताने वाला था एक्चुअली, मैं अच्छा हुआ।
उसमें 2 साल ज्यादा ट्वेल्थ के बाद 2 साल है डाइट कोर्स है।
अच्छा,
डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल ट्रेनिंग।
स्पिरिचुअल लाइफ यदि फ्यूचर में अल्टीमेटली क्यों हम ये सब चीजें करें, स्पिरिचुअल लाइफ नॉर्मल भेज रही है तो बेस्ट है।
హరే కృష్ణ
ನೋಡಿ ಅಗಲೆ ವೆನ್ಸ್ಡೆ ರಥಯಾತ್ರ ಅಗಲೆ ವೆನ್ಸ್ಡೆ ಕೋನ್ ಆ ರೇ ಗಣೇಶ
ಕೃಷ್ಣ
ರಥಯಾತ್ರ प्रॉमिस करते जा रहे थे लेकिन आए नहीं रहता।
मैं सर भाई कल हमारी बात नहीं हो पाई तो मैं नेक्स्ट ट्यूसडे आपको फोन कर दूंगा, पहले से रिमाइंड करा दूंगा। तो जब मेरे को फोन करोगे तो आ जाऊंगा। अराउंड 20 लोग हैं प्रॉब्लम जो फुल अटेंड कर रहे हैं, वहाँ पे
जा रहे हैं साथ,
और 7-8 लोग हैं जो 3 डेज के लिए आ रहे हैं।
ठीक है, 3 डेज मीन्स डायरेक्ट वहाँ पहुँचेंगे 8 को।
हाँ, 8-9-10 या 9-10-11 ऐसे अलग।
अच्छा अच्छा, थोड़ा सा तो हमें फिर एक बेसिक शेड्यूल।
दो लोग और भी हैं, दो लोग कृष्ण देव प्रभु जी के साथ, कोई ड्राइवर है उनका, वो उसकी मदर वो लोग वो भी सुना रहे हैं, लेकिन एक दिन बाद आएंगे।
अच्छा
अच्छा वो सेवन तो चल रहे हैं।
अच्छा
बाकी सबसे
बाकी प्रभा विष्णु प्रभा और ध्रुव का जाने आने का टिकट अवेलेबल है
30
उसका वो आईडी वगैरह तक कॉम्प्लिकेशन में होगा
नहीं वो
कोई और है ना
छह लोगों का है
आप फिर ठीक
बाकी सारे चेंज हो गए उसमें जो सनी सनी भाई की वाइफ है ना सत्यजीवन भाई की वाइफ वो जा रही है तो आईडी
वो जा रही है और फिर प्रभु की प्रभु को उधर जा रहे
हैं ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा किसी से स्टार्ट हो रहा है ये।
अच्छा अच्छा हाँ
फिर वो पहले स्टार्ट करो शुरू में मिस हो जाएगा उनका फिर वैसे 4 मंथ का या 4.5 मंथ का है
तो कार्तिक तक चलेगा
हर जगह हमारा 1.5 साल का था तो उसमें तो मिस हो इतना बड़ी बात नहीं ज़्यादा मिस
नहीं यहाँ तो बहुत क्विकली चला जाता है ना लेकिन अच्छा है भक्ति शास्त्री हो जाए बेटर आदमी जिम्मेदारियाँ बढ़ेगी और मुश्किल होगा और बच्ची भी छोटी है तो कोई टेंशन नहीं ना
जी उन्होंने वहाँ फ्लैट भी ले लिया तो
फ्लैट ले लिया
वृंदावन में
वो बहुत एक्टिव है फिर
पहले बुक किया था अब वो मिल गया पूरा
अच्छा
मिक्स का 1 रूम का है 1.5 लाख का पड़ा
हाँ अच्छा ठीक है कभी तो जा कर
नहीं
मैंने ऑलरेडी प्रसाद लेके आया प्रसाद लिया
एकादशी प्रसाद मंदिर से
नहीं प्रसाद लिया और निकला मैं एकादशी प्रसाद ही लिया बीस लोग हैं 20 डिवोटीज फाइनल है
20 फुल वो हैं
जो साथ जा रहे हैं हमारे तो केवल प्रभु वगैरह
वो गिना क्योंकि टिकट बुक कर रहे हैं
हाँ वो अभी मुझे ड्रॉप करने आए थे मेट्रो में तो कह रहे मैं तत्काल निकालूंगा
तो वो कैसे कहा कि वो मेरे को कैसे करवा दो मैं कहा सवेरे चले जाओ लेकिन इतना रश नहीं रहेगा सर इसी रूट में रश है बाकी रूट में रश खत्म हो गया बच्चे छुट्टियाँ खत्म हो गई ना
अच्छा
तो तत्काल में बहुत ज़्यादा रश नहीं रहेगा।
अच्छा और ये लेकिन ये जगन्नाथपुरी के रूट में
जगन्नाथपुरी रूट में थोड़ा सा ये भी
जाएंगे
इस एक वीक
बस
बाकी नहीं
मुझे फ्रूट्स में इतने कैसे ले जाओ
मैंगो है और वो दूसरे वो भारी वाला मैंने रख दिया
ठीक है
वो आप
ले जाएंगे तो मैं ले
आऊँगा नहीं नहीं ठीक है आपको क्यों तक मिल जाएगा
नहीं नहीं वो ज़्यादा वेट था मैंने इसको
कम करिए
कम है
थैंक यू
भक्त
मैं आलसी हूँ कुछ ले जाने के लिए एक्चुअली नहीं ले जाता ब्रह्मचारी को भी आदत है
मजबूरी और डांट पड़ती है सब दिन लेके ये लेके आज करते हो आम ही लेके आए सर के लिए लेके आए
नहीं लक्ष्मी जी थैंक यू
हरे कृष्णा पूरी कब निकल रहे हैं
आपके साथ ही जाएंगे तो मुझे तो वहाँ दिखाई देंगे जरूर
नहीं नहीं बाहर जाते हैं ना हमारे साथ जाते हैं
उससे बाद में आऊँगा थोड़ा
कब रथ यात्रा के एक दिन पहले
इस बार अगस्त में प्रभु जी जो छुट्टियाँ पड़े ना तो हम पूरे फैमिली से जा रहे थे थोड़ा भाव तो था बहुत भीड़ होती है
भीड़ तो है बहुत और फैमिली के साथ जाना थोड़ा टफ है एक दिन के लिए टफ होता है वो
8 अगस्त में जा रहे हैं 15 को वापस
अच्छा पूरा एक हफ्ता बिताएंगे और इस समय बारिश होगा वेदर अच्छा नहीं मैक्सिमम लोग क्लास में थे हरे
कृष्ण
हरे कृष्ण
बताइए
लाइक मेरे जो बॉस है डायरेक्टर है शुक्ला है यूपी के पंडित एनएसओ कॉल्ड पंडित है ही क्वेश्चंस कि ना भगवद गीता में ना श्रीमद भागवतम में दिया हुआ है प्याज लहसुन छोड़ना तो कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है इस बॉस क्वेश्चनिंग में कौन से ग्रंथ
पुराणों में है भविष्य पुराण में वर्णन किया है क्यों नहीं खाना है और एक पुराण है और ये तामसिक फूड है तो गीता में ऑलरेडी
तामसिक है बट ही वांटेड कि शास्त्र
का नेम नेम नेम
नेम लिखा हुआ है करके
ये भविष्य पुराण में है
भविष्य पुराण में
हाँ ये कैसे क्रिएट हुआ मांस गाय के मांस से बना ये ऑलरेडी ये सब दिया है ना
दोनों के लिए प्याज और
हाँ दोनों गाय के मांस से ही बना है दोनों चीजें वो स्टोरी भी एक्सप्लेन किया एक ग्रेडी ब्राह्मण का वो स्टोरी है और फिर अलग अलग पुराणों में भी इसका वर्णन आया है
भविष्य पुराण बता रहे हैं
हाँ भविष्य पुराण और मेरे पास नोट्स होगा मैं अभी रिसेंटली 4-5 साल पहले कुछ 8 पुराणस पढ़ा था मैंने तो उनमें था क्लियरली लेकिन मुझे वो एग्जैक्ट रेफरेंस ढूंढ के फिर देना होगा लेकिन पुराणों में क्लियर है ये प्याज और लहसुन का वर्णन
ये दो चीज़ और एक चीज़ और वो वेरी कुछ बताओ तो उसका ऑपोजिट इस तरीके से करते हैं वो कहते हैं कि महाभारत में क्या ऐसा कोटेशन आता है क्या प्रभु जी कि बलराम वगैरह ने भी कुछ मदिरा पी रहा नॉल दाट इस तरीके से यादवों का
आता नहीं, 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 मदिरा वो ये है ना
कुरुक्षेत्र के में मैदान में जब इनकी युद्ध के बाद इन्होंने सेलिब्रेट किया एंड ऑल दैट काइंड ऑफ
वो वहाँ है द्वारका में
द्वारका में?
हाँ।
अच्छा,
वो मदिरा एक डिफरेंट प्रकार का पेय है, उसको मदिरा वर्ड यूज किया गया।
इवन दे कंज्यूम, बलराम जी वगैरह दे कंज्यूम्ड इट।
बलराम का नाम तो ऐसे आया नहीं, लेकिन बलराम तो वारुणी पीते हैं।
अच्छा।
वारुणी किससे निकलता है वो?
वृक्ष से।
हाँ, समथिंग है।
But that is not proper,
लेकिन वो कोई इंटॉक्सिकेंट
नहीं है
ना,
लाइक हाँ।
कुछ लोग कॉम्प्लिकेटेड चीजें पकड़ के रख। प्रभुपाद को एक बार किसी ने कहा, प्रभुपाद वेज नॉन वेज के बारे में बोल रहे थे, किसी ने कहा राम ने भी तो मांस खाया था। कहते लॉर्ड रामा खाए, वो तुम्हें भी खा सकते और सारे जगत को भी खा सकते हैं। ऐसे कहा था उनको, वो तो भगवान है। तो उनके लिए लागू नहीं है।
Actually, हाँ, मैं फोर रेगुलेटरी प्रोसीजर्स बता दी थी, तब जाकर उन्होंने पूछा कि जब उन्होंने ये लिया था तो लोगों के लिए क्यों मना किया इस तरीके से दी हुई थी। तो आई सेड कहाँ लिखा हुआ, महाभारत में लिखा हुआ है। मैंने कहा नहीं, इट्स नॉट देयर। आई वाज,
अरे फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स तो यहाँ दिए हैं भागवतम के, परीक्षित के उस चैप्टर में दिए हैं। मद्यपानम सुनामी, चार चीज़ों का वर्णन किया है। कलयुगा के लिए ये चार चीज़ें वर्जनीय हैं, तो भागवतम का रेफरेंस दे सकते हैं फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स का।
कौन सा श्लोक?
फर्स्ट कैंटो में।
फर्स्ट
कैंटो में कली, कली को दंड, पनिश्ड, परीक्षित किंग पनिश्ड कली, ऐसा एक चैप्टर है। हाँ, पनिशमेंट याद रखिए, तो उसमें है कली। हाँ, तो उसमें वो सिक्वेंस ऑफ श्लोकाज है, और श्लोक एग्जैक्टली है चार चीज़ों को। बेस्ट प्रसाद नहीं ले रहे आप? बेस्ट है। उससे आया
बता रहे थे ना गोपी प्रभु, मैं कोशिश कर रही हूँ।
फ्रूट्स या जूस वगैरह ले लो,
ग्राउंड नट्स भी है ना, वो भी लेके आई।
ठीक है,
थैंक यू प्रभु जी, इट्स रियली नाइस आपके क्लास का है ना।
नहीं, मैं देखता हूँ अभी यार, डिटेल जाना थोड़ा, आई डोंट नो, लेकिन बोल दो जा एक बार। हरे कृष्णा। तो डिवोटीज चैंटिंग करे थोड़ा,
चैंटिंग कर रहे हैं प्रभु जी यहां पे, चैंटिंग तो कर ही रहे हैं।
हां, सब लोग तो चैंट कर रहे हैं,
एंड दे आर कीपिंग एकाशी आल्सो।
हां,
नहीं यहां इतना फॉलो अप नहीं हो रहा है, जैसे जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है ना।
हाँ, उसमें ज़्यादा
हुआ तो उसमें पूरा मंदिर जोड़ने का प्रोग्राम हो पाता है, यहाँ उतना नहीं हो पाता। परसेंटेज होना चाहिए, क्योंकि घर में हम लोग जान पाते हैं वो नहीं।
हाँ, मुश्किल है।
हस्बैंड वाइफ में एक जुड़ रहा है, ये बड़ा सबसे बड़ा। वैसे प्रोग्राम शुरू होंगे तो फिर उससे
अब लेंगे तो सर
आप ले लीजिए, ले लीजिए। नहीं, मैं चलता हूँ, मैं ऑलरेडी प्रसाद पाया और निकल। माता जी जा रहे क्या? ठीक है, आप प्रसाद ले लीजिए, मैं चलता हूँ। नहीं 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 चाहिए साथ। हरे कृष्ण।
तो हैं ये देख रहे हैं।
लास्ट टाइम भी मुझे उन्होंने छोड़ा था। ठीक है,
ठीक है,
मिलता। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अभी कितने लोग आ रहे हैं उस प्रोग्राम में? अभी क्या, कौन से टॉपिक्स पर लेक्चर्स लेते हैं?
अभी तो
गीता के मेन मेन श्लोक या कैसे? अच्छा, जनरल जनरल टॉक का
बीच से भी एक आध श्लोक है।
किसने? दामोदर प्रिय, दिल्ली टेम्पल से।